फिर अगली तो फिर बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है, लिखिए हमदिली और दिलजोई करने वाली शख्सियत, हमदर्दी और दिलजोई करने वाले, यानी जिनके अंदर एम्पैथी है, आप कह लीजिए कि बड़े हमदर्द हैं, सिंपैथिक लोग हैं और एम्पैथिक लोग हैं। आप इनके बारे में क्या जानते हैं? देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनका एक दूसरा नाम रख लीजिए, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस शख्सियत के हामिल लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के जज्बात का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरे जैसा महसूस करते हैं खुद ये भी वैसा ही महसूस करते हैं। फितरी तौर पर, यानी कहें कि बाय बर्थ या गॉड गिफ्टेडली, ये लोग दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जिसको आप जाविया निगाह कह दें, उससे दुनिया को देखने और समझने के काबिल होते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है, याद रखिए। आप दूसरे कैच पे चले जाएं, अपनी जगह उधर ले जाएं, आप आधे ज़्यादा मामला खूबसूरत हो जाएंगे। ज़िंदगी का असूल रखें, शौहर बीवी का झगड़ा नहीं तूल पड़ेगा, माँ बच्चों का मामला या किसी का भी, जब आप अपने आप को दूसरे के एंच पे ले जाएं। इस वक्त वो क्या सोच रहा है, मसा एक मियाँ है, वो कह के घर में 5 बजे आ जाऊँगा, शॉपिंग पे चलेंगे, आप 4:30 बजे से तैयार होके बैठी थी, परेशान थी, वो 5 नहीं आए, 5:15 नहीं आए, 5:30 हो गए, आपका पारा चल पड़ा, हाय ये वो, बस आज जान के देर से आ रहे हैं ताकि अल्लाह करे दुकान ही बंद हो जाए, ये होगा वो होगा। अब वो अंदर आए तो आप गुस्से में भड़क उठी, पाँव पटकने लगी, अच्छा जी अब आपको पता है ना कि अब तो दुकानें बंद हो गई, तो आप आ गए घर, क्या पता बेचारे बाहर किस मुसीबत से निकले। तो लुक एट द अदर एंड, ये लोगों में ये खूबी बहुत होती है। और इसी तरह से आप देखिए कि ये दूसरों की राय से मुत्तफिक हो ना हो, दूसरों को हमेशा फील ये कराते हैं कि यस यू आर राइट, आई नो, आई एग्री। लोगों से दिलजोई का मतलब ये भी नहीं है कि वो इनकी जज्बाती गहराई में नहीं उतरेंगे या ये उतर जाएंगे, यानी दिलजोई कभी कभी दिल रखने के लिए भी कर देते हैं, लेकिन जो मसाइल है ना उसका हल करने की कोशिश भी करते हैं। और याद रखिए, इंसानी मामलात में किसी के जज्बात को समझना, अगर अल्लाह ने आपको ये खूबी दी है ना, यानी बाय नेचर अगर आप दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, आप वली हैं, वली का नाम समझ रहे हैं, यानी आपकी ये बहुत बड़ी खूबी है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के जज्बात को समझें, हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, हम तोहफे भी देते लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो दूसरों के जज्बात को समझते हैं। इन लोगों में ये बहुत खूबी होती है, ये लोग इस सलाहियत के ज़रिए बहुत सारे ऐसे सवालात जो कहने भी नहीं पड़ते, पूछने भी नहीं पड़ते, उसको समझ जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अनकहे सवालात सुनने के काबिल होते हैं। और ये लोग इंसानी ज़रूरियात को कहीं बेहतर तौर पर समझ लेते हैं, जहाँ लोग अल्फाज की तलाश में होते हैं ना कि अच्छा अब हम क्या रहें, वहाँ ऐसे लोग दुरुस्त अल्फाज क्या दुरुस्त अंदाज का इंतखाब करके बात पूरी कर भी आते हैं। अच्छा, दूसरे भी इनसे बहुत फ़ायदा उठाते हैं, चूंकि ये दूसरों के जज्बात को आवाज़ और अल्फाज का रूप धारते हैं ना, तो लोग इनके पास आकर सोचते हैं कि हम किसी मसीहा के पास आ गए हैं, लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि हमदर्दी किसको अच्छी नहीं लगती, दिलजोई किसको अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बाज़ दफ़ा फिर इनकी नेगेटिव बात भी है, हमदर्दी में सबको यस कह आएंगे, मसलन अब बजे हैं 5:59, ये 4 लोगों को 7:30 का टाइम दे देंगे, ठीक है मैं आ जाऊंगी या आप आ जाइए, अब जूं ही 7:30 होंगे ना तो 4ों में से 3 तो आ गए, अब ये परेशान है, फिर एक के साथ बात करेंगे कि आप ज़रा बैठिए मैं 2 मिनट में आई, अब जब दूसरी तरफ गए तो 2 मिनट तो नहीं, उसने तो 6 लिए, तो पहला कहेगा ये मुझे किस मुसीबत में डाल दिया इन्होंने, वो तीसरी जो पहले ही अभी इंतज़ार में थी, यानी ओवर कमिट कर लेते हैं। और इस पे बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, बाज़ लोगों की ये खूबी उनकी बहुत बड़ी खामी बन जाती है, जब लोग क्या कहने लगते हैं, बाजी सबको हाँ कह देती हैं, ये बाजी तो किसी को नो नहीं कह, ये सबको झूठी उम्मीदें दिलाती हैं, कोई क्या कहेगा, करना जो नहीं होता तो सबको यस कह देंगे, करना होता तो कैसे कहते सबको यस। तो ऐसे लोगों को बहुत रियलिस्टिकली लोगों की हमदर्दी के अंदर ये सेट कर लेना चाहिए कि क्या वाकई जो ये कह रही हैं वो करेंगी। देखिए, लोगों को आपका अच्छा नहीं याद रहता, बुरा याद रहेगा, लोग उस चीज़ पे रहेंगे। फिर इसी तरह से इनके लिए बेस्ट प्रोफेशंस क्या हैं, साइकाट्रिस्ट, इंसानी दुख दर्द सुनने वाले, जैसे रिफाई इदारे होते हैं, क्राइसिस सेंटर है, सोशल सेंटर्स हैं, जहाँ अमूमन दुखी लोग आते हैं जिनके पास खाना नहीं है, किसी का कोई और पेपर है, तो इनको हमेशा ऐसे काम देने चाहिए कि जिसमें दूसरों के जज्बात समझे जाएं, यानी दुखी लोगों में इनको कोई काम देना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिसमें जज्बात का इजहार करने का मौका मिले, ये वहाँ खुश रहते हैं। वरना ये घुटन महसूस करते हैं। इनको किसी जगह आप बिठा दें ना, कुर्सी मेज़ पे, या इनको कंप्यूटर दें या ऑफिस में बिठाएं, ये घुटन महसूस करेंगे, क्योंकि इनको आदत थी हर आधे घंटे में किसी एक का दुख सुन के उसके आंसू पोंछने की। इनको कंप्यूटर चलाना भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक पाँव पे खड़े होके हमदर्दी के नाम पे, कह लीजिए मोहब्बत के नाम पे, ये दूसरों की मदद करके आ जाते हैं, चाहे इनके अपने घर वाले इनसे नाराज़ी हों। और अक्सर ऐसे लोग बातें भी सुनते हैं, एक को खुश करेंगे तो दूसरे को नाराज करेंगे। मसलन मिसाल, एक बीवी है, वो घर से जा रही है क्लास में, स्कूल में, मियाँ पूछते हैं कब आओगी, मैं अभी आई। अब अभी कैसे, मियाँ तो इंतज़ार शुरू हो गया, अभी वो आनी है 4 बजे। अच्छा, अगर इन्होंने 4 बजे आना होता है ना, तो ये मियाँ, बस मैं ये 3 के बाद आ जाऊँगी, मुरादे के 3 कहूँगी। अब वो 3 से जो 4 का घंटा, वो मियाँ पे बड़ा बोझल है। इनको क्या चाहिए कि ये अगर 4 बजे आना है ना, तो बोले मैं 5 बजे आऊँगी, और ये कभी ना कहें कि मैं अभी आऊँगी, ये कहें कि इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं आ जाऊँगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो कि हर बंदा इनके पास जाता है, जैसे बच्चा माँ के पास जाता है ना, अक्सर लोग इन्हीं की तरफ आते हैं। तो इनको चाहिए कि अपने वक्त, अपने पहले से किए हुए कमिट काम को सामने रखते हुए दूसरे बंदे की बात सुने, और खामोशी की अहमियत को भी समझना चाहिए, दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बस दफ़ा इनको मनफी रद्द अमल भी पेश होता है, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दिल से बड़े मुखलस हैं, दिल जो ही करना चाहते हैं, तो किसी का दिल टूटता नहीं देख सकते, कहते हैं मैं दिल नहीं तोड़ सकती। तो ऐसे लोगों को बड़ा मुतवाजन रहकर चलना पड़ता है। हमेशा देखें कि हमारी दिलजोई से, हमारी हमदर्दी से दूसरे लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें। बस लोग इनसे रूल्स ब्रेक करवाते हैं, बस आप एक इंस्टीट्यूट को ओन करते हैं, वहाँ हर बंदे का एक काम है, हर एक एक लिमिट है, लोग इनके पास आएंगे, हालांकि वो इनका फील्ड ही नहीं, इनका डिपार्टमेंट नहीं। अब लोग आए, चले जी बाजी वो ऐसे, बाजी वो, बाजी को क्या चाहिए, प्लीज़ आप उधर चाहिए, वो फील्ड वाले लोग हैं, वो करेंगे। तो बाजी बीच में जाकर अगर उनकी साइड लेंगी ना, तो ये बाजी की नासमझी होगी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि एक हद, ज़्यादा नहीं, जस्ट वन स्टेप लोगों को अपने से दूर रखें, क्योंकि लोग अक्सर इनका नाम लेकर इदारों के, इंस्टीट्यूट के, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को ब्रेक करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के करीब रहने से ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को नुकसान होता है। और अगर आप देखिए कि कहते हैं कि ये एक ऐसी खूबी है, यानी इस पर्सनैलिटी में, कि जिसके पास, जो कैरियर के स्पेशलाइज करने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि 2020 तक ये सलाहियत किसी भी जॉब में सबसे ज़्यादा अहम सलाहियत मानी जाएगी। यानी आने वाले वक्त में जो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज हैं ना, अपने एम्प्लॉयज़ में ये खूबी देखना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए इखलास के साथ काम करने लिए बहुत थोड़े हैं, पैसे के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन हमदर्दी नहीं होती। बस एक टीचर है और वो हमदर्दी नहीं, वो लेसन प्लान पढ़ा के निकल जाएगा, उसको क्या पता कि बच्चे को समझ भी आया कि नहीं आया। तो लिहाजा ऐसे लोगों को भी, जो प्रोफेशंस हैं वो तदरीस के, कोचिंग के, काउंसलिंग के प्रोफेशंस इख्तियार करने चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसी पर्सनैलिटी रखने वालों को भी ह्यूमन लेवल पे काम करना चाहिए, यानी मशीनों से ज़्यादा लोगों के साथ, यानी इंट्रोवर्ट किस्म के नहीं, बल्कि ये ओपन माहौल में काम करने वाले होते हैं। अगली पर्सनैलिटी भी लीजिए, 17 नंबर, फुली फोकस्ड, मुकम्मल तौर पे मुतवज्जेह लोग। ये कौन से होते हैं, जिनके गोल्स और इनकी डेस्टिनी बहुत क्लियर कट होती है। दे गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू देयर गोल, देयर डेस्टिनेशन। रोज़ाना अपने आप से लाशौरी तौर पर एक सवाल करते हैं कि मैं किधर जा रही हूँ, हम कहाँ पहुँच गए, हमने प्लानर कितना देख लिया, टाइम टेबल किस हद तक फॉलो हो रहा है कि नहीं। आप कह सकते हैं कि इन्हें हर दम वाज़ह मंजिल की ज़रूरत रहती है, जिस पर वो फोकस कर सके। और अगर कभी वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस ना कर सके, तो बेचैन हो जाते हैं, कहते नहीं मेरा माइंड आजकल बड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। बस कोई इनकी ज़िंदगी में ज़रा सी ऊँच नीच हो, इन्होंने सफ़र पे जाना हो तो परेशान होंगे, नहीं असल में मैं अभी अभी ओके नहीं कर सकती, अभी मैं आजकल फोकस नहीं कर रही, ये नहीं वो नहीं। यानी फोकस लोग, आप बिल्कुल कंपस को जहन में लाइए कि एक सिरा अंदर है और दूसरा उसके गिर्द घूम रहा है। तो फोकस शख्सियत वाले जो लोग होते हैं ना, ये हर साल का, हर महीने का, बल्कि हर दिन का कोई गोल तय करते हैं। आज सुबह मैंने किचन की अलमारियाँ साफ़ करनी है, शाम तक मेरा पूरा किचन साफ़ होगा, आज मैंने क्लोज़ेट साफ़ करना है। और वाकई फिर ये गोल इनके लिए मैग्नेट का काम देते हैं। जब ये गोल मुतय्यन कर लेते हैं, तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि अपने इन गोल्स को अचीव करें, और जब कभी किसी के सामने कोई प्रायोरिटाइज की जाए चीज़ को, तो ये अमली तौर पर गोल्स को, व्हाट डू यू वांट टू गेट फ्रॉम इट, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस, क्या करना है, यानी ये हर बंदे से बात करते हुए कहते हैं फ़ायदा क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, इससे मिलेगा क्या। मसलन कोई इनसे कहते हैं चलो सैर करते हैं, कहते हैं क्या फ़ायदा, चले बाजार चलते हैं, क्या लेना है, अच्छा किसी रिश्तेदार को मिला है, क्या होगा, यानी ये ना एंड पे पहुंच जाते हैं, एक जंपिंग सी पोजीशन होती है। और याद रखिए, चूंकि इनके अंदर फोकस की सलाहियत बहुत स्ट्रांग होती है, आप सोचिए ना, ड्राइवर, ऐसे लोगों को ड्राइवर बनना चाहिए, और इसी तरह से लीडर बनना चाहिए। ट्रेन को देख लीजिए, फिर आप देखिए कि इस फोकस की वजह से एक कामों को उनकी अहमियत के अतबार से फिल्टर भी कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट का फ़र्क इनको बड़ा अच्छा पता होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, और चार फॉर्म्स हैं, हम अपने टाइम मैनेजमेंट के सेशंस में पढ़ाते हैं नूरुल्लाह नूर में, कि अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होते, कुछ इम्पॉर्टेंट भी होते हैं अर्जेंट भी होते हैं। तो ये चीज़ों को उसकी इम्पॉर्टेंस के अतबार से फ़िल्टर कर लेते हैं, और अल्लाह ने इनको एक खूबी दी होती है, बहुत सही असेस करते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, अब करना है, कौन सा बाद में करना है। बस एक बिल है, अगर 3 दिन बाद भी वो पे हो गया तो इट्स ओके, लेकिन आज शाम तक कोई काम ना किया तो वो एक्सपायर होगा। तो ये माशाल्लाह इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं, और कह लीजिए कि सर खपाने, वक्त ज़ाया करने, अपनी तवज्जो को या अपनी एनर्जी को ज़ाया करने से इनको चिढ़ होती है, बस मकसद पे नज़र रखते हैं, और चूँकि फोकस्ड हैं तो अपनी कारकर्दगी भी, यानी इनकी अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। जिन जो इनके साथ लोग लगते हैं वो इनको काम करता देख कर इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और ना सिर्फ ये कि अपने काम को फोकस करते हैं बल्कि लोगों को और चीज़ों को भी फोकस करते हैं। इसीलिए फिर ये ना सिर्फ लोगों से फ़ायदा उठाते हैं, चीज़ों से भी फ़ायदा उठाते हैं। मसलन इनकी फ्रिज में एक सब्ज़ी है, वो ख़राब हो रही है, इनको लगता है आज ठीक है, 2 दिन बाद ये ख़राब होगी, तो ये पहले उस सब्ज़ी को पकाएंगे। ये कोई ऐसी चीज़ फ्रीज़र से नहीं निकालेंगे जो अगला 1 महीना भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह ये चीज़ों को बहुत मैनेज करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इनके घर में कोई फालतू चीज़ नहीं दिखेगी, कोई ख़राब चीज़ नहीं दिखेगी, इनका ट्रैश बहुत थोड़ा होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस शख्सियत का एक अदर भी लेवल है, यानी सिक्के के दो रुख होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ज़रा सा देर हो, कोई रुकावट आ जाए, ये बेसब्रे हो जाते हैं, और बास दफ़ा अपनी टीम के दूसरे लोगों के बारे में ये थोड़े से अग्रेसिव भी हो जाते हैं। देखिए ना, किसी टीम में कुछ लोग अभी बिगिनर हैं, कुछ मिडल पे हैं, कुछ माशाल्लाह सीनियर्स हैं। अब हर बंदे का काम फ़र्क होगा, ये हर बंदे से दी बेस्ट लेवल डिमांड कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों के लिए कुछ मशवरे कि कैसे ये अपने पॉजिटिव से लोगों को फ़ायदा दे और नेगेटिव्स को निकाल दें, तो पहली बात है इनको वहाँ काम करना चाहिए जहाँ किसी की मुदाखलत ना हो, आज़ाद माहौल हो, और काम भी इनको गोल ओरिएंटेड दिया जाए। गोल बनाइए जी, चलिए भाई अपने इस 1 साल का प्लानर बनाए, इनसे बनवाइए, अच्छा सारे साल की मीटिंग्स का टाइम नोट करिए, अच्छा ये टेस्ट कब होंगे, ये काम कीजिए, यानी ऐसा काम जिसमें ये अपने दिमाग के साथ काम करें। इनको दूसरों की गाइडलाइन ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि दूसरे चूंकि इतने फोकस नहीं हैं, तो इनको कहना चाहिए कि आप हमें बताइए कि हम क्या करें। फिर दूसरी बात है कि डेडलाइंस के साथ इनको काम दें, बहुत खुश होंगे। कुछ लोग माइंड करते हैं, नहीं 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 हमें ढीला छोड़ दें, हम अपने वक्त पे काम करेंगे। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं माशाल्लाह, सैकड़ों वॉलंटियर फॉर्म आते हैं अल्लाह की रहमत से, ढेरों पड़े भी रहते हैं, कई लोगों को काम मिलता ही नहीं अभी तक, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं करने वाले। अच्छा कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें फ्लेक्सिबल टाइम काम दे दें, हम अपनी मर्ज़ी से कर लें, कुछ कहते हैं जी नहीं, हमें बस क्लास के बीच का टाइम दें, अलग से नहीं देना। तो ये वो लोग होते हैं, इनको आप एग्जैक्ट दें, भाई देखिए 2 से 5 की क्लास है, आपने इस 3 घंटे में काम कर दें, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक, ये 2:45 तैयार होंगे, और उधर 5:05 पर ये जाना भी चाहेंगे, ये इनकी खूबी होती है। तो ऐसे काम फिर ऐसे लोगों को देने चाहिए। साथ ही साथ ये प्रोग्रेस को भी देखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं क्या उसमें ग्रोथ हो रही है, आर वी ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग। और फिर इनको एक बहुत प्यारी आदत होती है, ये लिखते बहुत है, इनके पास थिंग्स टू डू के छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे ऐसे वो कह लीजिए कि खूबसूरत सी स्टेशनरी होगी, डायरियाँ इनके पास बहुत सी होती हैं, ये अपने घर की दीवारों के ऊपर वाइट बोर्ड्स लगा के रखते हैं, और अक्सर उस पर गोल ऑफ द डे, गोल ऑफ द वीक, अच्छा इस छुट्टियों में जा रहे हैं तो वहाँ क्या लेना, इस सैर में जा रहे हैं तो कैसे कब क्या होगा, कहीं सफ़र करेंगे तो इन्होंने एक एक मिनट का हिसाब किताब लिखा होता है कि हम कैसा करेंगे, कहाँ रुकेंगे, अच्छा रास्ते में स्नैक्स खाने, ये स्नैक्स भी अलग से पैक करके रखेंगे, यानी बिल्कुल आप कह लीजिए कि हर गोल ये पहले से सोच लेते हैं। अभी नाश्ता किया है, अभी 12 बजे भूख लगनी है, अच्छा उस वक्त क्या होगा, अच्छा गाड़ी में जा रहे हैं, उस वक्त तो हम किसी बड़े सहरा से गुजर रहे होंगे, ओ एक कोई बात नहीं मैंने बच्चों के लिए स्नैक पैक कर लिए हैं, यानी ये इस टाइप के बहुत क्लियर कट काम करने वाले लोग होते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर आप ऐसे लोगों का घर देखें तो बहुत डिसिप्लिन, वक्त पे सोना है, रात 10 बजे लाइट्स बंद हो जाएंगी, सुबह फजर के बाद कोई नहीं सोता दिखेगा, एसी जो है वो सुबह में बंद हो जाएंगे, खिड़कियाँ खोल देंगे, और फिर इस तरह काफ़ी बैलेंस लाइफ होती है। आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल किस्म के ये लोग होते हैं, और इनके लिए भी अच्छे काम जो हैं वो किसी मंथली रिसाले का एडिटर होना, कि इस पूरे जो कह लीजिए कि मैगजीन होगा उसमें क्या आना है, अखबार नवीसी में ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें डे टू डे न्यूज़ होती हैं। फिर इसी तरह से कह लीजिए कि टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स, मसलन बिल्डिंग बनानी है तो ठेकेदार कह लीजिए या कोई बिल्डर है जिसको कहा गया कि आपने ये काम हमें इतने वक्त में देना है, तो ये लोग बहुत अच्छा ये काम करते हैं, अल्लाह ने इनको ये खूबी दी होती है। आपके घर वालों से कोई गवाही चाहिए है, कोई गवाही
जी
देने वाला
जी
आपकी, क्योंकि हम तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चुन के ले जाएंगे अपने लिए। और कोई आपको अपने एक साथ रहने वालों में या किसी भी किस्म का कोई इंसान याद आया इन चीज़ों को सुनते हुए, क्योंकि ये बातें हमारी इंसानों वाली है ना। मैं आपको सच बताऊं ये सभी का दूसरा नाम हिकमत है। हमारी दादियाँ नानियाँ या कुछ साहिबे जीरक खातून थी, उनको ये सब पता होता था। एक मुझे याद आ गया कि एक बुजुर्ग थे तो वो कहते थे कि तुम 10 औरतों से रोटी एक एक बनवा के मुझे दो, तो मैं उनकी रोटी देखकर तो मैं बता दूंगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैंने जब कहीं ये बात की, बहुत पहले की बात है, कि चूँकि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत लोगों के साथ इंट्रैक्शन होता है, यानी हमारा लाइफ स्टाइल ही ट्रैवलिंग है, घर से ज़्यादा बाहर होते हैं ना, तो मैं लोगों से बहुत सीखती हूँ। किसी ने कहा आप कितना टाइम पढ़ती हैं, आप इतने घंटे पढ़ा रही हैं, तो मैंने कहा मैं सारा वक्त ही पढ़ती हूँ, कुछ वक्त किताबें और उसमें से कुछ वक्त मैं कायनात से पढ़ती हूँ, खिड़की खोलकर और बादलों और हवाओं से बातें करती हूँ अल्लाह से, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों को पढ़ती हूँ। मेरे टीचर लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे जो किसी के घर में होते हैं ना, दे आर माई टीचर। वाई? मैं अक्सर उनकी माँ को कहती हूँ कि देखिए आपका ये बच्चा ये करेगा, कहती है आपको कैसे पता चला, मैंने कहा उसकी आंखें देखें, आप उसका सवाल करने का अंदाज़ देखें, वो कैसे है, और यकीन करें कि छोटे बच्चे को प्रिडिक्ट कर लेना तो आपने एक पूरी नस्ल बचा ली बिगड़ने से। तो हमारे अपने बच्चे, यानी आज से अगर आप देखें ना, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेके कितनी जी 17 कर लिए ना, अगर आपको ये 17 थिंग्स जो है, अब आपको एक दफ़ा में पूरी बात नहीं समझ आई, चाहिए रिकॉर्डेड है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे है, मिक्सलर पे है, वेबसाइट पे, ऐप्स पे, तो आप इसको दोबारा सुनिए, एक एक चीज़ को लिखिए, फिर आपको वही जैसे मैंने पहले भी दिन शायद बात की थी कहीं, कि एक ऐसी हैंगमैन सा बना ले, एक हैवला नहीं होता, सर है बाजू हाथ, उसके अंदर ये चीज़ें फिट करें। सबसे पहले तो हमें अपने आप को बेहतर करना है, मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं, फिर अपने बच्चों को देखें, फिर मियाँ को देखें। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा ये स्टाइल नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप इसको कर सकेंगी।
जी
और
वो
अक्सर
आएगा,
बड़े
वो
ऐसे
आएगा।
ही थे, वक्त के साथ बाप भी लीनियट होते जा रहे हैं, माएँ भी ऐसी हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे ऊपर इतना असर डाल दिया कि आगे माँ बाप अपने बच्चों के जागने और सोने का टाइम मुकर्रर करते थे, अब मीडिया करता है, माँ बाप सो जाएं बच्चे अपना फ़ोन लेके कमरे में सारी रात भी जागते रहें तो कौन उनका पहरा दे। तो आज आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल पे डिफरेंस डाल रही हैं, और इससे पर्सनालिटीज़ भी बहुत बदल रही हैं ना। और आगे भी देखिएगा कि जब ज़िंदगी अभी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटराइज पर्सनैलिटीज़ आएंगी, कभी आप बचपन में कहते थे रोबोट, और आजकल इस तरह के और बहुत सारे हैं, और ये आपकी जो पर्सनैलिटी है आपके बच्चों की ये नहीं हो सकती। आपके दादा ने, आपके बाप ने, आपके ससुर ने आपसे जिस तरह डील किया, आज के माजरत के साथ दादा भी वैसे डील नहीं करते, बाप और ससुर बेचारों ने तो क्या करना है, तो आपके ये बच्चे वैसे नहीं होंगे जैसे आप हैं। अगर आप खुद समझदार हैं, यानी जो कहना चाहिए कि बाहिकमत माएँ होती हैं ना, ये कहते हैं कि माँ के दूध का असर, नानी का असर, माहौल का असर, तो बेटियों को अपने साथ जोड़िए। अगर वो हर वक्त कंप्यूटर्स और मशीनों और फोन्स और चैट और स्नैपचैट में रहेंगी, वो आप जैसी नहीं बनेंगी। यानी आज भी देर इज वन डोर ओपन, और वो क्या है कि साथ रखिए। माँ की बात आज आपको भी याद रहेगी। क्या बचपन की बातें आपको भूलती हैं? एक एक बात मैं कहती हूँ कि जो बचपन में शऊर शुरू होने से लेकर आज तक बाप ने, माँ ने, बड़ों ने, टीचर्स ने, उस्तादों ने, कि एक एक ऐसे जैसे पत्थर पे लकीर डली हुई है। तो अपने बच्चों को टाइम दें, असल बात है, अपने रिश्तों को टाइम दें। अब आप कहते हैं अच्छा हमने 17 टाइप्स पढ़ ली हैं, तो अब शौहर के साथ कैसे करें, कि आप जाके आज उसको सबक सुना दूं कि भई आप तो ये थे, आप तो कंपेटिबल थे, आप तो ये थे वो थे। नहीं, आप टाइम दीजिए। किताबों से देखकर कोई नहीं पढ़ता। दी बेस्ट टीचर इज आप खुद हैं। जिस इंसान को भी आप फोकस में करते हैं, आप इस मजीद पे भी और सुनेंगे, पढ़ते जाएं, इस पे ज़रा सा पहले खुद पे काम करें। अभी जल्दी में जाकर दूसरों पे ना काम करें कि पता चले कि वो और भी आपसे परेशान हो। तो ज़रा सा देख लेते हैं कि अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आ चुकी, तो उसमें आप देखिए कि कंपेटिबल्स, सबको समझने वाले, मुनसिफ मिजाज, पस मंज़र को देखने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, फिर तामीरी शख्सियात देखी, हमदर्दी और दिलजोई करने वालों को हमने देखा, फिर इसी तरह से फोकस लोगों को देखा जो बहुत ही ज़्यादा इस पे करते हैं। अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो हमारे पास है वो है नंबर 18, मुस्तकबिल के लिए पुरजोश, फ्यूचरिस्टिक टाइप के लोग। यानी ये वो लोग हैं जिनकी नज़र हमेशा फ्यूचर पे होती है। तो इंशाल्लाह आप देखिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें रखेंगे, कुछ चीज़ें अल्लाह ऐसे ही दे देता है, कुछ आपको मांगनी पड़ती हैं, तो मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं ज़रा अगली पर्सनैलिटी, मुस्तकबिल के लिए पुरजोश लोग, फ्यूचर पे इनकी नज़र होती है। कह लीजिए कि ऐसे लोगों को मुस्तकबिल या फ्यूचर का लफ्ज़ बहुत ललचाता है, दे आर ग्रीडी फॉर फ्यूचर कह लीजिए। ये अपनी सलाहियत, इस सलाहियत की वजह से मुस्तकबिल को इस तरीके से विजुलाइज़ कर लेते हैं, जिसको आप उर्दू में कहें तो तस्वीर कशी कर लेते हैं, कि ये लोग अपने हाल से ज़्यादा अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की फ़िक्र में रहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि आने वाले वक्तों के लिए बेहतर चीज़ें हों। बच्चे भी छोटे हैं उनके घर ले लेंगे, बेटियां भी छोटी हैं उनके सोने के सेट माएँ बना के रख लेंगी, वो जो है इसकी बेटी ले लेंगी, उसके अंदर बेटियों के लिए सामान डालते रहे, बड़े होकर बेटी ने कहना मैंने नहीं लेना ओल्ड फैशन चीज़ें। लेकिन ये हमेशा आगे देखते हैं, और ये बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर टीम, बेहतर ज़िंदगी, हत्ता कि एक बेहतर दुनिया को तश्कील पाने के ख्वाब देखते रहते हैं। फिर इनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि ये ख्वाब बहुत देखते हैं। कौन से ख्वाब? सोते के जागते के? जागते के ख्वाब, क्योंकि जो जागते के ख्वाब है ना वो सोने नहीं देते। तो इनका विजन बहुत क्लियर होता है, वाइड स्पेक्ट्रम होता है इनका, और कह लीजिए कि मुस्तकबिल बीन होते हैं। जो लोग ऐसा नहीं सोचते, आप मिसाल है कि 2020 है इस वक्त, और अगर 2018 में ये लोग कुछ ऐसा सोच चुके थे कि जो 2020 में काम आएगा, तो अब ये तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, लेकिन इनके साथ के इनके हम उम्र हम असर लोग वो काम नहीं करते। तो फिर लोग उस वक्त इनको बहुत कामयाब समझते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बारिश आने से पहले छप्पर डाल लो। ये कुछ इस किस्म के लोग होते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि जिस वक्त लोग परेशान होते हैं, नाउमीद होते हैं, तो ये लोग उस वक्त बहुत कामयाब होते हैं और अच्छी सोच वाले होते हैं। तो फिर उस वक्त ये दूसरों को एनर्जी देते हैं, उनके अंदर भी उम्मीद देते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। कह लीजिए कि मुस्तकबिल को रोशन देखने की सलाहियत भी इनमें होती है, बल्कि दूसरों को रोशन मुस्तकबिल दिखाते भी हैं। और आप कह लीजिए कि इनके गिर्द जितने भी लोग मौजूद होते हैं ना, उनको इनसे एक बसीरत मिलती है, एक अनदेखी खुशी होती है लोगों को इनको मिलकर, और आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए उम्मीद हैं ये। यानी ये लोग किसी मुआशरे की उम्मीद हैं, ये एक ऐसी मोमबत्ती हैं कि जो बुझती नहीं है। और याद रखिए कि जिस शख्स की उम्मीद टूट गई उसका मुस्तकबिल खो गया, जिस शख्स में उम्मीद नहीं है उसका मुस्तकबिल नहीं है। और वो लोग जो मुस्तकबिल को देखते हैं, फिर उनमें जब उम्मीदें कूट कूट के भरी जाती हैं और फिर इतनी बढ़ गई कि अपने साथ दूसरों को भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन ना उम्मीद भी एक चीज़ है, आप अपने घर में मिसाल है टमाटर ले आए तो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है ना, तो आप अपने हमसाये को भी कहेंगे भाई आप भी ले लीजिए। तो इन लोगों के पास बैठिए अगर आप नाउमीद हैं, आप परेशान हैं, और इनका अल्फाज का इस्तेमाल जो होता है अगर वो अच्छा हो तो लोगों के लिए वाकई ये मसीहा होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये कभी कभी झूठी उम्मीदें भी दिलाते हैं फिर, क्योंकि लोग दूसरी तरफ के होते हैं इनके पास, इनको अमूमन कोई काम करना हो तो नया कारोबार शुरू करना चाहिए। बिल्कुल शुरू में बंदा लॉस पे होता है, फिर बराबरी पे आता है, फिर उसके बाद आप देखें तो वो अच्छे तरीके पे भी काम करने पे आ जाता है ना। इनके अंदर मतलब हर कुर्बानी देने का जज्बा भी होता है, बेस्ट मोटिवेटर होते हैं ये लोग। और इन लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों से बहुत बचें। कौन से लोग? आप देखिए ना कि ये पुरउम्मीद है, ये नाउम्मीद लोगों के पास जाएंगे तो उनको तो उम्मीदें देंगे, लेकिन अगर इनको कोई इनसे भी बड़ा पुरउम्मीद मिल गया, जिसको आप कहते हैं क्लबे मिलाने वाला, तो कभी कभी फिर ये ख्यालों की जन्नत में भी रहने लगते हैं। यानी शौहर भी ऐसा तो बीवी भी ऐसी। वही बात है कि वो पता नहीं क्या कहते हैं कि लात मारी, वो एक बंदा तो बड़े ख्वाब देखता, उस करेक्टर का क्या नाम था,
शेख चिली के
शेख
ख्वाब।
चिली के ख्वाब। जी बिल्कुल, ये लोग कह लीजिए कि कुछ कुछ शेख चिली वाले होते हैं कि फिर मैं से सर हटाऊंगा, और फिर उसका सर से मटका ही गिर गया तो वो सारी बकरियां भी मर गईं जो उसने ख्वाबों में बनाई हुई थी। बास लोग इनकी बातों को दीवाने की बढ़ कहते हैं। छोड़ो जी, ये तो ऐसी बड़ी फरलाटियां मारने वाले भी कह सकते हैं, यानी ये बड़ी बोंगियां भी मार आते हैं कभी कभी। बाज लोग कहते हैं छोड़े उनकी क्या बात है। अब आप इमेजिनेशन में लाएं कि अगर ये लोग एंकर्स बन जाएं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे आके लोगों से बातें करें, तो टूटे हुए हौसलों वालों को उम्मीद भी मिलती है। ऐसे लोगों को एंकर्स बनना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अब पाकिस्तान ख़त्म हो गया, अब मुसलमान टूट गए, अब इनमें तो कोई खैर ही नहीं है। और ऐसे लोग कह लीजिए कि अगर कभी कभी, जो हम पीछे पड़ चुके ना एक्टिवेटर्स, यानी कुछ लोग होते हैं कि जो एक्टिवेटर्स होते हैं, ये अगर सिर्फ उम्मीदें लगा रहे हैं ना, तो इनको अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लगाना चाहिए जो एक्टिवली काम भी करें। मतलब मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि अच्छा कल रात एक डिनर है हमारे घर में, ऐसा करते हैं हम उसमें रेनबो राइस बनाते हैं, हम उसमें स्टीम रोस्ट बनाते हैं, फिर हम उसमें वो कह लीजिए कि डिज़र्ट बनाते, मैं बैठी रहूँ बातें जो करूँ तो आप मेरे साथ बैठी खुश होते रहें, वाकई ठीक है, हाँ चले ज़रा लिखे, हाँ क्या क्या बन, 10-15 चीज़ें बना ले तो उसके बाद हम सो जाएं, तो कल सुबह हमारी आँख ही ना खुले, और 12 बजे के बाद जब आँख खुले तो हमारा हाल क्या होगा? क्या ये रात को बैठकर प्लान की ये काम आएगा? आपको चाहिए कोई एक्सपर्ट जो कुकिंग करे, खड़े हो जाओ किचन में, ये भी बनाओ ये भी बनाओ, ये हमारी लिस्ट है। ऐसे लोगों को एक्टिवेटर्स चाहिए। यानी शादी करनी हो ना, मियाँ साहब अगर शेख चिली है ना, तो बेगम क्या आप बैठ के ख्वाब देखे तो मैं जरी हांडी पकाऊँ। अगर मियाँ बीवी दोनों बैठ के ख्वाबों की जन्नत में बैठे रहे तो उस दिन बच्चों को रात को भूखे सोना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये ख्वाबों के सोचों के बादशाह, तो इनको अमल के बादशाहों के साथ रहना चाहिए, यानी रियलिस्टिक हो। अच्छा ये बात हमने अपने वालिद से बहुत दफ़ा सुनी थी कि अल्लाह ने जो शौहर बीवी के जोड़ बनाए, अमूमी बात है, बाकी देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह होती है ना। आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर मियाँ बहुत खुले हाथ का है ना, तो बीवी हाथ खींचने वाली होगी। ऐसा होता है? किसी को याद तो नहीं आगे कोई। अच्छा कभी कभी ये होता है कि बीवी खुले हाथ की है तो मियाँ सब ज़रा हाथ खींचते हैं। तो वो कहते थे कि हर दरिया के साथ एक पहाड़ होता है, पहाड़ जितना ऊंचा उसकी खाई उतनी गहरी है। मुराद ये कि अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। अगर मियाँ दरिया दिल है और अगर बीवी भी दरिया दिल हो जाएगी, तो 15 दिन के बाद होता तो नहीं है, देने वाला तो कभी फोकट नहीं होता, लेकिन वो पूरे महीने की तनख्वाह 2 हफ्ते में खा पी के बैठ चुके होंगे। ये अल्लाह का असूल है। आप कई घरों को आप अपनी दोस्तों में, अपनी बहनों में, अपनी कजन्स में देखिए, अल्लाह ने जो शादियाँ करवाई होती है ना, बड़ा बेस्ट मैच होता है। 90% हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। दिल हमारा क्या करता है, मेरा मियाँ बिल्कुल मेरे जैसा हो तो घर नहीं चलेगा। बीवी कहती है मियाँ मेरे जैसा, मियाँ साहब कहते हैं ये बिल्कुल, हम चाहते कि हमारे जैसे हो। हर बंदा अपने जैसा होना चाहता है ना। बच्चा कहता है मैं चॉकलेट मांगू, माँ मुझे चॉकलेट दे दे, माँ कहती है मैं इसे कौन दूध पी लो तो ये फ़ौरन दूध पी लें। हम चाहते ये हैं कि लोग हमारे जैसे हों, पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं। ऐसे ही कि बॉडी को हर तरह की डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह एक घर में डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वरना ज़िंदगी बड़ी बोर हो जाए। बिल्कुल आप ही जैसी एक, और कह लें कि आप तो औरत है और एक मर्द आप ही जैसा है, आप भी किचन में काम कर रही हैं, वो भी काम कर रहे हैं, आप भी सफाई बहुत रखती हैं, वो भी सफाई रखते हैं, तो आपके ज़िंदगी में चैलेंज ही कोई नहीं रहेगा। कई शादियों में सिर्फ 20 साल तक एक मुकदमा ही नहीं हल होता कि आप नहाने के बाद अपना टॉवल बेड पे क्यों रखते हैं। बीवी कहती है मैं आपको 20 साल में ये नहीं समझा सकी, पर मसला ये कि अगर मियाँ साहब अपना टॉवल उठाकर हैंग कर दें या बिन में फेंक दें, तो आपकी ज़िंदगी का चैलेंज किधर गया, बोर हो जाएंगी आप। तो ये वो जो होती है ना मुखालफतें और डिफरेंट थिंग्स, ये इंसान के अंदर जीने की उमंग भी पैदा करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला के वजूद का भी एहसास होता है। तो बहरहाल ऐसे लोगों को साइंटिस्ट होना चाहिए। बहुत अच्छे होंगे, इन्वेंशंस बहुत अच्छी करेंगे ये लोग, एडवर्टाइजिंग कंपनीज में इनको रखिए, फिर इसी तरह लिखने में ये बहुत अच्छे हैं, पब्लिक स्पीकिंग का काम ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, यानी कह लीजिए कि जहाँ लोगों की उम्मीदें टूट रही हों, लोग मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हों, वहाँ इन लोगों को लाइए, तो फिर इंशाल्लाह इनके लिए बहुत ही खैर का ज़रिया होगा।